एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, आज हम एक ऐसे विचारक की दुनिया में गोता लगा रहे हैं जिनकी सोच ने, आप कह सकती हैं, पश्चिमी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। दर्शन, धर्मशास्त्र, यहाँ तक कि हम खुद को कैसे समझते हैं, इस सब पर उनकी गहरी छाप है।
हाँ,
हम बात कर रहे हैं हिप्पो के संत ऑगस्टीन की।
बिल्कुल, और ऑगस्टीन सिर्फ मतलब एक संत या धर्मशास्त्री ही नहीं थे, वो एक तरह के इंटेलेक्चुअल ब्रिज थे।
ब्रिज कैसे?
जिन्होंने वो टूटते हुए रोमन साम्राज्य और जो नया ईसाई मध्ययुग उभर रहा था उनके बीच विचारों का एक पुल बनाया, और उनकी खुद की जिंदगी भी कमाल की है। एक बहुत प्रतिभाशाली दुनियादार किस्म के नौजवान से अपने समय के सबसे प्रभावशाली चिंतक बनने तक का सफर।
हाँ, ये सफर अपने आप में ही एक कहानी है, मतलब मानव मन की उथल पुथल, उसकी खोज, और जिसे वो ईश्वरीय कृपा कहते हैं, उसका एक जीता जागता ड्रामा लगता है।
सही कहा।
और ये सब उस दौर में हो रहा था जो खुद ही बड़े बदलावों का उथल पुथल का समय था। तो आज इस ज्ञान गोष्ठी में हम ऑगस्टीन के जीवन, उस तूफानी दौर को, उनके बड़े आइडियाज जैसे मूल पाप और ईश्वर का नगर, इनको समझने की कोशिश करेंगे।
हाँ, और उनकी खास किताबें जैसे कन्फेशंस और उनकी जो स्थायी विरासत है उस पर भी बात करेंगे।
बिल्कुल, देखते हैं कि आज भी वो हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं। चलिए शुरू करते हैं।
तो ऑगस्टीन का समय मतलब चौथी सदी का आखिर और पांचवी सदी की शुरुआत है ना, 354 से 430 ईस्वी। ये वेस्टर्न रोमन एम्पायर के लिए बहुत बहुत ही ज्यादा उथल पुथल का दौर था।
हाँ, साम्राज्य बिखर रहा था, राजनीतिक अस्थिरता थी।
बिल्कुल, और सिर्फ राजनीतिक नहीं, सांस्कृतिक रूप से भी बड़ा मंथन चल रहा था। वो जो पुराना क्लासिकल पॉलीथीइस्टिक मतलब बहुदेवीवादी धर्म था वो कमजोर पड़ रहा था।
और ईसाई धर्म उसकी जगह ले रहा था, जिसे अब राज्य का समर्थन भी मिलने लगा था।
हाँ एग्जैक्टली, और इसी माहौल में 4010 एडी में वो घटना हुई जिसने सबको हिला दिया। रोम शहर को लूटा गया विसिगॉथ्स ने।
ये तो बहुत बड़ा झटका रहा होगा, मतलब रोम, वो तो अजय माना जाता था।
बिल्कुल, ये सिर्फ एक मिलिट्री हार नहीं थी, ये एक साइकोलॉजिकल शॉक था। और कहते हैं इसी घटना ने ऑगस्टीन को उनकी वो महान किताब ईश्वर का नगर लिखने के लिए प्रेरित किया।
अच्छा, ये दिखाने के लिए कि दुनिया के साम्राज्य तो आते जाते रहते हैं, पर एक और नगर है जो स्थायी है।
सही, और वो दौर विचारों के टकराव का भी था। एक तरफ ईसाई विचारक थे जो क्लासिकल फिलॉसफी, खासकर
नियोप्लेटनिज्म मतलब प्लेटो के विचारों का एक नया रूप।
हाँ, एक आध्यात्मिक रूप जो मानता था कि सब कुछ एक परम स्रोत से आता है और आत्मा को वहीं लौटना है। तो ईसाई विचारक इसे अपनी आस्था से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे।
और दूसरी तरफ,
उन्हें मैनिकेज्म जैसे धर्मों से भी जूझना पड़ रहा था, और दूसरी धार्मिक विचारधाराओं से भी जैसे डोनाटिज्म, पेलाजिनिज्म, विचारों का युद्ध क्षेत्र था वो समय।
आपने मैनिकेज्म का जिक्र किया, ये क्या था और अगस्टिन के लिए इसका क्या महत्व था?
मैनिकेज्म एक ड्यूअलिस्टिक धर्म था, मतलब ये मानता था कि दुनिया में अच्छाई और बुराई ये दो बराबर की इंडिपेंडेंट ताकतें हैं जो हमेशा लड़ती रहती हैं।
अच्छा,
और युवा ऑगस्टिन जो दुनिया में बुराई क्यों है इस सवाल से बहुत जूझ रहे थे, उन्हें शुरू में ये आइडिया बड़ा लॉजिकल लगा, आकर्षक लगा।
हाँ, ये बुराई की पहेली का एक सीधा जवाब लगता है।
बिल्कुल, वो करीब 9 साल तक इससे जुड़े भी रहे।
लेकिन फिर उनका मोह भंग हो गया। किन लोगों या विचारों ने उन्हें इससे दूर किया?
इसमें एक तो नियोप्लेटनिस्ट दार्शनिक थे प्लॉटिनस, उनके विचारों से उन्हें ये समझने में मदद मिली कि बुराई कोई अलग शक्ति नहीं बल्कि अच्छाई की कमी है। और बचपन में रोमन वक्ता सिसरो की एक रचना थी हॉर्टेंसियस, उसने उन्हें फिलॉसफी की तरफ खींचा था। और फिर ईसाई धर्म की तरफ लाने में संत पॉल के पत्र और मिलान के जो बिशप थे संत एम्ब्रोज, उनका बहुत बड़ा रोल रहा।
चलिए उनके जीवन का सफर थोड़ा और गौर करते हैं। उनका जन्म हुआ रोमन नॉर्थ अफ्रीका में थागास्टे शहर में।
हाँ
आज के अल्जीरिया में है ये जगह।
हाँ उनकी विरासत बर्बर रोमन थी, पिता पैट्रिशियस वो मूर्ति पूजक थे और माँ मोनिका वो एक बहुत ही समर्पित ईसाई थी।
ये विरोधाभास तो शुरू से ही उनके जीवन में रहा होगा।
हाँ, और माँ का प्रभाव बहुत गहरा था, हालांकि शुरू में वो उनकी राह पर चले नहीं। शिक्षा बहुत अच्छी मिली उन्हें, बयानबाजी में मतलब रिटोरिक में वो बहुत तेज थे।
लेकिन युवावस्था?
हाँ, कार्थेज में पढ़ते हुए उनकी जवानी काफी रंगीन और भोग विलास वाली थी। इसी दौरान उनका एक लंबा रिश्ता रहा एक महिला से। उनसे एक बेटा भी हुआ, एडियोडिटस।
और बौद्धिक रूप से वो मैनिकेइज्म की तरफ खिंचे थे जैसा आपने बताया।
बिल्कुल रे हुआ। वो बेहतर मौकों के लिए पहले रोम गए, फिर मिलान पहुंचे, और मिलान में उन्हें इम्पीरियल प्रोफेसर ऑफ रेटोरिक, मतलब बयानबाजी के शाही प्रोफेसर का बड़ा पद मिला।
मिलान उनके लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुआ।
बिल्कुल। वहीं उनकी मुलाकात हुई बिशप एम्ब्रोस से। एम्ब्रोस सिर्फ धार्मिक नेता नहीं थे, वो एक बड़े बुद्धिजीवी भी थे।
एम्ब्रोस का क्या खास असर पड़ा ऑगस्टिन पर?
एम्ब्रोस ने उन्हें दिखाया कि बाइबल को सिर्फ लिटरल मीनिंग में नहीं बल्कि सिम्बोलिकली, रूपकात्मक और दार्शनिक गहराई से भी समझा जा सकता है।
अच्छा।
इसने ऑगस्टिन की ईसाई धर्म को लेकर जो बौद्धिक आपत्तियां थीं, उनमें से कई को दूर कर दिया। एम्ब्रोस के उपदेशों ने उनके मन में जो संघर्ष चल रहा था उसे और तेज कर दिया।
और फिर आया वो मशहूर किस्सा 386 ईस्वी में मिलान के एक बगीचे में उनका रूपांतरण।
हाँ, ये उनकी किताब कन्फेशंस का सबसे नाटकीय हिस्सा है। वो अपने पापों और अनिश्चय के बोझ से एकदम दबे हुए थे, परेशान थे। तभी उन्हें पास के घर से बच्चों के गाने की आवाज सुनाई दी, टोले ले गए टोले ले गए,
जिसका मतलब था उठाओ और पढ़ो।
हाँ, उन्होंने इसे एक डिवाइन कमांड, एक दैवीय संकेत माना। पास में संत पॉल की चिट्ठियां पड़ी थीं, उन्हें खोला और जो पहला अंश पढ़ा, कहते उसने उनके सारे शक मिटा दिए और उन्होंने ईसाई बनने का फैसला कर लिया।
ये तो वाकई किसी फिल्म के सीन जैसा लगता है।
बिल्कुल। इसके फौरन बाद 387 ईस्वी में एम्ब्रोस ने उन्हें बपतिस्मा दिया, लेकिन उसी साल उनकी माँ मोनिका की मृत्यु भी हो गई, जिन्होंने सालों तक उनके बदलने के लिए दुआएं मांगी थीं।
हाँ, माँ की मृत्यु उनके लिए बहुत बड़ा सदमा थी, पर शायद इसने उनके इरादे को और मजबूत किया।
बपतिस्मा के बाद वो नॉर्थ अफ्रीका लौट आए।
उनका प्लान शायद एक शांत पढ़ने लिखने वाला जीवन बिताने का था।
हाँ, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। 391 में हिप्पोरेजियस शहर में लोगों ने उन्हें लगभग मजबूर कर दिया पुरोहित बनने के लिए। वो चाहते नहीं थे।
अपनी इच्छा के विरुद्ध।
हाँ, और फिर कुछ साल बाद 395 या 396 में वो वहीं के बिशप बन गए।
और फिर अगले 35 साल
हाँ
वो एक अथक पादरी, उपदेशक और लेखक के रूप में काम करते रहे।
बिल्कुल। न सिर्फ अपने चर्च को संभाला बल्कि उस समय के जो धार्मिक विवाद थे उनमें भी वो कूदे। जो उस समय का रूढ़िवादी ईसाई मत था उसकी रक्षा की और इतना लिखा कि उसने सदियों तक पश्चिमी सोच को डिफाइन किया।
और उनका अंत भी उसी अशांत दौर की तरह हुआ।
हाँ, 430 ईस्वी में जब वैंडल जनजाति उनके शहर हिप्पो को घिरे हुए थी, उसी घेराबंदी के दौरान उनकी मृत्यु हुई। कहते हैं आखिरी दिनों में उन्होंने पश्चाताप के भजन दीवारों पे लगा रखे थे, उन्हें पढ़ते थे और रोते थे, अपने पाप और ईश्वर की दया पर सोचते हुए।
वाह, एक जीवन जो इतनी उथल पुथल से शुरू हुआ, इतनी गहरी आत्मखोज से गुजरा और इतनी स्थायी विरासत छोड़ गया। चलिए अब उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं पर बात करते हैं जिन्होंने विचारों की दुनिया पर इतनी गहरी छाप छोड़ी। सबसे पहले कन्फेशंस, यानी स्वीकारोक्ति।
कन्फेशंस ये सिर्फ ऑटोबायोग्राफी नहीं है, ये शायद वेस्टर्न लिटरेचर की पहली साइकोलॉजिकल ऑटोबायोग्राफी है।
मनोवैज्ञानिक आत्मकथा?
हाँ, ये ईश्वर को संबोधित एक लंबी प्रार्थना है जिसमें ऑगस्टिन बड़ी निर्ममता से अपनी आत्मा का विश्लेषण करते हैं, अपनी गलतियां, अपनी तलाश, अपना रूपांतरण, सब कुछ।
इसमें खास बात क्या है?
खास बात यह है कि ये सिर्फ बाहरी घटनाओं का ब्यौरा नहीं है, ये उनकी आंतरिक दुनिया, जैसे याददाश्त कैसे काम करती है, समय का नेचर क्या है, इच्छाओं का संघर्ष क्या है, इन सब पर बहुत गहरा चिंतन है।
ये तो कमाल है। ऐसा लगता है जैसे वो सदियों पहले ही आंतरिकता या इंटीरियोरिटी के महत्व को समझ गए थे, जिस पर बाद में मॉडर्न फिलॉसफी में इतना जोर दिया गया।
निश्चित रूप से। फिर आती है द सिटी ऑफ गॉड, यानी ईश्वर का नगर।
हाँ, ये तो रोम की लूट के बाद लिखी गई थी, है ना, जब लोग ईसाई धर्म पर सवाल उठा रहे थे।
बिल्कुल। उस माहौल में ऑगस्टिन ने ये विशाल ग्रंथ लिखा। इसमें सिर्फ ईसाई धर्म का बचाव नहीं है बल्कि ये इतिहास का एक पूरा दर्शन है।
इतिहास का दर्शन? संक्षिप्त में क्या है वो?
ऑगस्टिन कहते हैं कि दुनिया में दो अदृश्य शहर हैं जो हमेशा से संघर्ष में रहे हैं। एक है मनुष्य का नगर, ये सेल्फ लव, घमंड, दुनियावी ताकत पर टिका है।
और दूसरा?
दूसरा है ईश्वर का नगर, ये ईश्वर के प्रेम और विनम्रता पर आधारित है। दुनिया के जो भी साम्राज्य हैं वो इसी मनुष्य के नगर का हिस्सा है, इसलिए उनका पतन तो होना ही है।
अच्छा।
सच्ची और स्थायी शांति, न्याय, खुशी, ये सब केवल ईश्वर के नगर में ही मिल सकती है, जो इस दुनिया में पूरी तरह से कभी साकार नहीं होता। चर्च उसका एक प्रतीक है और उसका असली रूप स्वर्ग में है।
इस विचार ने तो मध्ययुगीन यूरोप की सोच पर बहुत गहरा असर डाला होगा, चर्च और राज्य के रिश्ते को लेकर।
हाँ, बहुत ज्यादा। इतिहास को इस नजरिए से देखना, ये वाकई एक बड़ा वैचारिक शिफ्ट था।
उनकी एक और महत्वपूर्ण किताब है ऑन क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन, या ईसाई सिद्धांत पर।
हाँ, ये एक तरह से बाइबल को समझने और सिखाने की गाइड बुक है। इसमें ऑगस्टिन कहते हैं कि ईसाइयों को क्लासिकल नॉलेज जैसे रिटोरिक, फिलॉसफी, इनका इस्तेमाल करना चाहिए,
लेकिन एक शर्त के साथ।
हाँ, शर्त ये कि लक्ष्य हमेशा ईश्वर के वचन को बेहतर ढंग से समझना और समझाना हो। उन्होंने ईसाई हर्मिन्यूटिक्स, मतलब बाइबल की व्याख्या करने के सिद्धांत, उसकी एक विधि भी बताई जो सदियों तक प्रभावशाली रही।
और उन्होंने ट्रिनिटी जैसे मुश्किल ईसाई सिद्धांत पर भी बहुत विस्तार से लिखा।
और जीवन के आखिर में रिट्रैक्टेशंस नाम की किताब में अपने पहले के लेखन को रिव्यू भी किया। ये उनकी बौद्धिक ईमानदारी दिखाता है। बिल्कुल सही, ये उनकी कुछ सबसे फेमस रचनाएं हैं, पर उनका लेखन बहुत विशाल है। उसमें धर्मशास्त्रीय बहसों पर लिखे ग्रंथ, उनके उपदेश, चिट्ठियां, बहुत कुछ शामिल है।
अब अगर हम उनके मूल दार्शनिक और बौद्धिक योगदानों पर फोकस करें तो कौन से विचार सबसे अहम है? मूल पाप और कृपा का जिक्र बार बार आता है।
हाँ, ये ऑगस्टिन की थियोलॉजी का, उनके धर्मशास्त्र का सेंट्रल पॉइंट है। उन्होंने इस विचार को स्थापित किया कि आदम और हव्वा का जो पहला पाप था, जिसे ओरिजिनल सिन या मूल पाप कहते हैं, उसका असर पूरी मानव जाति पर पड़ा है।
असर मतलब?
मतलब ये कि इस वजह से इंसान की इच्छा शक्ति, उसकी विल पावर कमजोर हो गई है और वो खुद अपने दम पर मुक्ति, सैल्वेशन हासिल नहीं कर सकता।
तो फिर मुक्ति कैसे मिलती है?
मुक्ति ईश्वर का एक मुफ्त तोहफा है, जिसे वो अपनी ग्रेस या कृपा से देता है। इसे कमाया नहीं जा सकता।
इस विचार का तो बहुत प्रभाव रहा, लेकिन इसने फ्री विल यानी स्वतंत्र इच्छा के सवाल को भी तो खड़ा किया होगा।
बिल्कुल।
ऑगस्टिन मानते थे कि कृपा मिलने के बाद भी इंसान के पास फ्री विल होती है, लेकिन ये कृपा ही है जो इच्छा को अच्छाई की तरफ मोड़ने में सक्षम बनाती है।
इस पर उनकी बहस भी हुई थी शायद।
हाँ, उनके एक समकालीन थे पेलागियस, उनसे तीखी बहस हुई। पेलागियस मानते थे कि इंसान अपनी इच्छा शक्ति से ही पाप से बच सकता है, उसे ईश्वर की खास कृपा की जरूरत नहीं। ऑगस्टिन इस बहस में जीते और उनका नजरिया पश्चिमी चर्च का स्टैंडर्ड बन गया। हालांकि ये बहस आज भी किसी न किसी रूप में चलती रहती है।
एक और बड़ा सवाल जिससे वो जूझे, वो था बुराई की प्रकृति का। मैनिकिज्म छोड़ने के बाद उनका क्या नजरिया बना इस पर?
उन्होंने मैनिकिज्म के ड्वैलिज्म को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। उनका तर्क था कि बुराई कोई अलग इंडिपेंडेंट शक्ति या तत्व नहीं है जो ईश्वर के बराबर हो।
तो फिर क्या है बुराई? बुराई है प्रवेश्यो बोहनी, मतलब अच्छाई के एब्सेंस, उसकी कमी। जैसे अंधेरा सिर्फ रोशनी की कमी है, वैसे ही बुराई अच्छाई की कमी है। ये आइडिया ईश्वर को सर्वशक्तिमान और पूरी तरह अच्छा बनाए रखने में मदद करता है।
ये समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, खासकर जब हम दुनिया में इतनी ठोस दिखने वाली बुराई देखते हैं, लेकिन दार्शनिक रूप से ये एक महत्वपूर्ण समाधान था। अच्छा, आस्था और तर्क के रिश्ते पर उनके क्या विचार थे?
ऑगस्टिन दोनों को जरूरी मानते थे, उनमें एक तालमेल देखते थे। उनके दो मशहूर सूत्र हैं, विश्वास करो ताकि समझो,
क्रीडे उट इंटेलिजेंस,
और समझो ताकि विश्वास करो,
इंटेलिजे उट क्रेडास।
बिल्कुल। उनका मानना था कि सच्चा ज्ञान पाने के लिए विश्वास एक स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन फिर तर्क और समझ उस विश्वास को और गहरा और मजबूत करते हैं। वो अंधे विश्वास के हिमायती नहीं थे।
और हमने आंतरिकता या सेल्फ की बात की थी, कन्फेशंस जिसका उदाहरण है।
हाँ, ऑगस्टीन ने सेल्फ एनालिसिस और आंतरिक अनुभव पर बहुत जोर दिया। उनका मानना था कि सत्य और ईश्वर की खोज बाहर भटकने से नहीं मिलती, बल्कि अपनी आत्मा में गहरे उतरने से होती है।
समय के बारे में उनका विश्लेषण भी बड़ा दिलचस्प है।
हाँ, कि अतीत हमारी यादों में है, भविष्य हमारी उम्मीदों में, और वर्तमान हमारे ध्यान में। यानी समय मन का ही एक आयाम है। ये उनके समय से बहुत आगे की सोच थी।
इसके अलावा ज्ञान कैसे मिलता है, इस पर दैवीय प्रदीपन, डिवाइन इल्यूमिनेशन का सिद्धांत।
हाँ, कि ईश्वर का प्रकाश हमारे मन को सत्य जानने में मदद करता है।
और युद्ध की नैतिकता पर न्यायपूर्ण युद्ध सिद्धांत, जस्ट वॉर थियरी की शुरुआती रूपरेखा भी उनके योगदानों में गिनी जाती है।
हाँ, उन्होंने कुछ शर्तें बताईं जिनके तहत युद्ध नैतिक रूप से जायज हो सकता है, हालांकि वो शांति के ही पक्षधर थे। अगर हम उनकी तुलना करें तो उन्होंने प्लेटो के दर्शन को एक तरह से ईसाई रंग दिया। बाद में थॉमस एक्विनास आए, जिन्होंने अरस्तु के दर्शन को, जो ज्यादा दुनिया पर केंद्रित था, उसे ईसाई धर्म से जोड़ा। इसने ऑगस्टिन के नियोप्लेटोनिस्ट प्रभाव को कुछ कम किया पर खत्म नहीं।
तो कुल मिलाकर ऑगस्टिन की विरासत क्या है, उनका प्रभाव कितना फैला हुआ है?
प्रभाव तो जबरदस्त और बहुत स्थायी रहा है। मिडिल एजेस में, मध्य युग में, तो वो वेस्टर्न चर्च के सबसे बड़े विचारक थे। उनकी सोच ने थियोलॉजी, फिलॉसफी, पॉलिटिक्स, एजुकेशन सबकी नींव रखी। पूरा मध्ययुगीन वर्ल्ड व्यू काफी हद तक ऑगस्टिनियन था।
और क्या उनका असर सिर्फ कैथोलिक परंपरा तक ही रहा?
बिल्कुल नहीं। 16वीं सदी में जब प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन हुआ, तो मार्टिन लूथर और जॉन कैल्विन जैसे जो लीडर थे, उन्होंने कृपा, पाप और प्रीडेस्टिनेशन
मतलब ये विचार कि ईश्वर ने पहले से तय कर रखा है कि किसका उद्धार होगा।
हाँ, इन मुद्दों पर उन्होंने ऑगस्टिन के लेखन से ही प्रेरणा ली। तो एक तरह से वो रेफॉर्मेशन के भी इंटेलेक्चुअल गॉडफादर कहे जा सकते हैं।
और दर्शन और साहित्य पर भी उनकी छाप दिखती है।
हाँ, उनकी वो जो सेल्फ एनालिसिस की शैली है, उसने बाद के कई दार्शनिकों को प्रभावित किया, जैसे देकार्त, जिन्होंने कहा मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, उनसे लेके मॉडर्न एग्जिस्टेंशियलिस्ट तक।
आज भी उनके विचारों का अध्ययन होता है?
बिल्कुल, आज भी थियोलॉजी, फिलॉसफी, हिस्ट्री, लिटरेचर, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, कई फील्ड्स में उनके विचारों को पढ़ा और डिस्कस किया जाता है। मानव स्वभाव, समाज, राजनीति, दुख और जीवन के अर्थ की तलाश, जैसे जो हमेशा रहने वाले सवाल हैं, उन पर उनकी बातें आज भी सोचने पर मजबूर करती हैं।
उनके कुछ मशहूर कथन भी हैं जो उनके विचारों की झलक देते हैं। सबसे ज्यादा शायद यही सुना जाता है, हे प्रभु, आपने हमें अपने लिए बनाया है और हमारा हृदय तब तक बेचैन रहता है जब तक वो आप में विश्राम न पाले।
ये कन्फेशंस की शुरुआत में ही है और उनकी पूरी किताब का सार है। ये इंसान के उस गहरी आध्यात्मिक प्यास की बात करता है जो दुनियावी चीज़ों से कभी पूरी तरह बुझती नहीं। एक बेचैनी है जो तभी शांत होती है जब इंसान अपने स्रोत यानी ईश्वर से जुड़ता है।
एक और बहुत भावुक कथन है कन्फेशन से ही, देर से मैंने तुम्हें प्रेम किया, हे सुंदरता जो सदा प्राचीन सदा नवीन है, देर से मैंने तुम्हें प्रेम किया।
ये उनके रूपांतरण के बाद का उद्गार है। इसमें पछतावा भी है कि उन्हें सत्य और सौंदर्य को पहचानने में इतनी देर क्यों लगी, और एक खुशी भी है कि आखिरकार उन्होंने उसे पा लिया। ये दिखाता है कि ईश्वर उनके लिए कोई एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल नहीं, बल्कि एक जीवंत सुंदर हस्ती थे।
और रूपांतरण वाले बगीचे के अनुभव से जुड़ा वो वाक्य, उठाओ और पढ़ो, उठाओ और पढ़ो,
टॉले लेजे, टॉले लेजे, हाँ, वो रहस्यमयी आवाज जिसने उन्हें बाइबल खोलने को कहा। ये दिखाता है कि ऑगस्टिन के लिए इंटेलेक्चुअल क्वेस्ट और मिस्टिकल एक्सपीरियंस दोनों का महत्व था।
एक और दिलचस्प सूत्र है, ईश्वर से प्रेम करो और जो चाहो वो करो।
डिरिजे एट क्विड विस। सुनने में ये थोड़ा अजीब लग सकता है।
हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो मन में आए वो करो। ऑगस्टिन का तर्क यह है कि अगर किसी के दिल में ईश्वर के लिए सच्चा और गहरा प्रेम है, तो उसकी इच्छाएं अपने आप सही दिशा में होंगी। वो व्यक्ति जानबूझकर कुछ गलत करना चाहेगा ही नहीं। सच्चा प्रेम ही सबसे बड़ा नियम बन जाता है।
और एक गहरा कथन, मृत्यु के सामने ही मनुष्य का स्वयं जन्म लेता है।
ये नश्वरता के बोध से जुड़ी बात है। जब इंसान अपनी लिमिटेशंस, अपनी मौत की सच्चाई का सामना करता है, तभी वो सतही बातों से ऊपर उठकर अपने असली वजूद, अपने ऑथेंटिक सेल्फ को खोज पाता है।
ये कथन वाकई उनके विचारों की गहराई दिखाते हैं। लेकिन ऑगस्टिन की आलोचना भी होती है। क्या मुख्य बिंदु हैं जिन पर आलोचक सवाल उठाते हैं? बिल्कुल, एक बड़ी आलोचना उनके प्रीडेस्टिनेशन और ग्रेस पर बहुत ज्यादा जोर देने को लेकर है। आलोचक कहते हैं कि इससे ह्यूमन फ्रीडम और नैतिक जिम्मेदारी का महत्व कम हो जाता है। अगर सब कुछ पहले से तय है और कृपा पर निर्भर है, तो हमारे कर्मों का क्या मतलब? ये एक मुश्किल थियोलॉजिकल पजल है।
लैंगिकता पर उनके विचारों की भी काफी आलोचना हुई है।
हाँ, शायद अपनी जवानी के संघर्षों की वजह से ऑगस्टिन के लेखन में सेक्सुअल डिजायर, जिसे वो कंक्यूपिसेंस कहते हैं, उसके प्रति एक गहरा शक और नेगेटिविटी दिखती है, शादी के अंदर भी।
अच्छा,
कई फेमिनिस्ट थियोलॉजियन और दूसरे क्रिटिक्स मानते हैं कि इसने वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी में शरीर और सेक्स के प्रति एक दमनकारी रवैये को बढ़ावा दिया।
मूल पाप का सिद्धांत भी विवादास्पद रहा है।
हाँ, खासकर ये विचार कि आदम का पाप विरासत में पूरी मानवता को मिला है, इसे कुछ लोग ह्यूमन नेचर के बारे में जरूरत से ज्यादा निराशावादी नजरिया मानते हैं।
और भी कुछ?
उनके समय में जो डोनाटिस्ट जैसे ग्रुप थे, जिन्हें वो हेरेटिक मतलब विधर्मी मानते थे, उनके खिलाफ उन्होंने राज्य की ताकत के इस्तेमाल का समर्थन किया। इसे कुछ लोग ईसाई धर्म की शुरुआती शांतिवादी परंपरा के खिलाफ मानते हैं, और ये भी सच है कि उनके जटिल विचारों को अक्सर बहुत सिंप्लीफाई करके पेश किया गया है, जिससे गलतफहमियां भी पैदा हुई हैं।
हर बड़े विचारक की तरह उनके विचारों के कई पहलू हैं जिन पर बहस होती रहती है। चलिए अब कुछ रोचक किस्सों या तथ्यों की बात करते हैं। वो नाशपाती चुराने वाला किस्सा काफी मशहूर है।
हाँ, कन्फेशंस में वो बताते हैं कि कैसे टीनेज में उन्होंने दोस्तों के साथ मिलकर पड़ोसी के बाग से नाशपाती चुराई। मजे की बात यह है कि उन्हें भूख नहीं थी और नाशपाती भी कोई खास अच्छी नहीं थी।
तो फिर क्यों चुराई?
सिर्फ गलत काम करने के मजे के लिए, नियम तोड़ने के रोमांच के लिए। ऑगस्टिन इसका इस्तेमाल ये दिखाने के लिए करते हैं कि पाप अक्सर कितना इरेशनल और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होता है। ये सिर्फ जरूरत से पैदा नहीं होता।
और उनकी माँ संत मोनिका की भूमिका भी बहुत अहम है।
बिल्कुल, संत मोनिका को ईसाई परंपरा में एक आदर्श माँ की तरह देखा जाता है, जिन्होंने अपने बेटे के रास्ते से भटक जाने पर भी उम्मीद नहीं छोड़ी और सालों तक उसके बदलने के लिए आंसुओं के साथ प्रार्थना करती रहीं। उनकी अटूट आस्था और धैर्य की कहानी ऑगस्टिन की कहानी का ही एक जरूरी हिस्सा है।
हमने उनकी मृत्यु के समय की बात की थी, हिप्पो की घेराबंदी के दौरान। कुछ और छोटी मोटी बातें,
जैसे रूपांतरण से पहले वो करीब 15 साल तक एक ही महिला के साथ रहे थे जो उनकी रखेल थी और जिनसे उनका बेटा एडियोडेटस हुआ। बाद में जब उन्होंने शादी करने का फैसला किया, जो कभी हुई नहीं, तो उन्हें उस महिला को भेजना पड़ा जिसका उन्हें बहुत दुख था।
अच्छा।
वो ग्रीक पढ़ सकते थे पर लैटिन को ज्यादा पसंद करते थे और अक्सर ग्रीक किताबों के लैटिन ट्रांसलेशन पर निर्भर रहते थे। उन्होंने नॉर्थ अफ्रीका में मोनेस्टीज जैसी कम्युनिटीज की स्थापना में भी भूमिका निभाई, और जैसा हमने कहा, वो शायद पहले वेस्टर्न विचारक थे जिन्होंने अपने मन की गहराइयों में इतना उतर कर लिखा।
तो हमने देखा कि संत ऑगस्टीन एक बेहद जटिल और प्रभावशाली शख्सियत थे। उनका जीवन व्यक्तिगत संघर्षों, बौद्धिक खोज और गहरे आध्यात्मिक अनुभवों का एक मिश्रण था। उनके विचारों ने न सिर्फ धर्मशास्त्र बल्कि दर्शन, राजनीति और आत्मसमझ को भी सदियों तक प्रभावित किया।
बिल्कुल, उनकी कहानी हमें दिखाती है कि कैसे पर्सनल एक्सपीरियंस और हिस्टोरिकल उथल पुथल मिलकर महान विचारों को जन्म दे सकते हैं। उनकी सत्य की वो जो लगातार खोज थी, ह्यूमन कंडीशन की उनकी गहरी समझ और उनकी ईमानदारी, वो आज भी हमें अपील करती है।
और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। ऑगस्टिन ने ईश्वर के नगर और मनुष्य के नगर के बीच जो एक द्वंद्व बताया, एक जो ईश्वर प्रेम पर आधारित है, दूसरा आत्म प्रेम पर, क्या ये विचार आज की दुनिया को समझने में हमारी मदद कर सकता है? जहां हम अक्सर बाहरी सफलता, भौतिक चीजों और सामाजिक विभाजन में उलझे रहते हैं, क्या ऑगस्टिन हमें किसी गहरे, ज्यादा स्थायी अर्थ की ओर इशारा करते हैं? इस पर सोचा जा सकता है।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नए विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।